सुखो यहाँ लेक्चर नंबर 3। ओम नमः सिद्धेश्वर।
ओम नमः सिद्धेश्वर।
ओम नमः सिद्धेश्वर।
ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोए सौवसाहूणं अज्ञानतिमिरांधानां ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
ये सहजानंद रचित सुख यहाँ नाम का जो पुस्तक है उसका ये प्रथम भाग है, उसके पृष्ठ संख्या 6 पर हम आ गए हैं। 1 नंबर की जो हमने श्लोक पढ़ा था और उसी की बात यहाँ चल रही थी, नीचे से दूसरी लाइन यहाँ से चल रही है। ये बात है कि आत्मा का स्वरूप परमात्मा के समान है और हम परमात्मा का दर्शन करते हैं वैसे तो अपने में ही करते हैं, क्योंकि ज्ञान में ही वो तो ज्ञेयाकार जो होते ज्ञान में ही होते, ज्ञान की ही अपनी योग्यता अपना सामर्थ्य है कि जान लेवे, तो हम अपने ज्ञान में ही परमात्मा का स्वरूप जानते हैं, तो इसलिए यह कहा कि अपने में ही उनका दर्शन होता है। अब नीचे, वैसे तो समोसरण में भी निराकार परमात्मा स्वरूप का दर्शन नहीं होता, किंतु साकार शरीर का ही दर्शन होता है। वहाँ शरीर दिखाई दे रहा है और उनके जो गुण है वो तो हम अपने ज्ञान के द्वारा उसका निर्णय करते हैं। सो ऐसे साकार शरीर के ही आँखों से दर्शन होंगे, जैसे यहाँ पर मंदिर में भगवान की मूर्ति के दर्शन होते हैं, किंतु जब तक ज्ञान से दर्शन नहीं होगा तब तक कोई लाभ नहीं। हम क्या कहते हैं, जब तक उसके भगवान के स्वरूप का निर्णय नहीं है, मात्र उनको अर्घ्य चढ़ाना पूजा करना, उससे कुछ लाभ नहीं है। उनके यही बात है, उनके स्वरूप का निर्णय करना है। अतः अपने आप की प्राप्ति होने पर ही परमात्मा को नमस्कार बनता है। अपने आप की प्राप्ति यानी आत्मा का अनुभव, अपने आप की प्राप्ति का उपाय राग द्वेषादि का अभाव होना है। राग द्वेष अहंकार आदि परिणाम ही परमात्मा के दर्शन में बाधक बनते हैं। अपने आप को जान लेने के बाद ही परमात्मा स्वरूप की समझ व अपनी सच्ची अनुभूति होती है। अपने ये कल बात उन्होंने बताई थी कि आत्म सन्मुख होना यानी आत्मा का अनुभव करना, इसी से राग द्वेष कम हो गया। यानी चैतन्य स्वरूप की अनुभूति नहीं, उसकी कुछ बात नहीं और राग द्वेष कम करने निकले तो कुछ हो गए तो नहीं, क्योंकि उसका स्वामी बन के बैठा है ना। यानी अपने कल बात आई था ना, ये इसी में आए थे। देखो 1 नंबर के श्लोक के नीचे अर्थ में लिखा था, निज आत्मा की उपयोग द्वारा प्राप्ति होने पर स्वयं राग द्वेष आदि क्लेशों का अभाव हो जाता है। मैंने राग द्वेष आदि, हाँ आप कल नहीं थे, हाँ वो वही है ना, हाँ ये राग द्वेष ओछा नहीं था, यही मार्ग है और कोई मार्ग नहीं। कल आप नहीं थे इसलिए आपको जैसा ब्लैंक दिखा। हाँ, राग द्वेष अहंकार आदि परिणाम ही परमात्मा के दर्शन में बाधक बनते हैं। अपने आप को जान लेने के बाद ही, ये पढ़ा था हमने, परमात्मा स्वरूप की समझ व अपनी सच्ची अनुभूति होती है। इस अनुभूति का बाधक है अहंकार। जब तक अहंकार रहता है तब तक परमात्मा के दर्शन नहीं होते। अहंकार ने अभिमान के रूप में भी लिखा और पर में अहम बुद्धि है वो भी ले लिया। भैया एक देश में एक नककटा रहता था, नाक कटी थी उसकी। पेज नंबर 7, छठी सातवीं लाइन है। उसने सोचा कि मुझे सब कोई नककटा कहकर चिढ़ाते हैं, ये चिढ़ा न सके इसका कोई उपाय निकालना चाहिए। बहुत सोचने के बाद उसने यह कहना प्रारंभ कर दिया कि मुझे साक्षात भगवान के दर्शन हो रहे हैं। मैं इस नाक की नोक व छाया नहीं होने से साक्षात भगवान के दर्शन कर रहा हूँ। अतः उसकी इस बात को देखने के लिए दूसरे पुरुष ने भी अपनी नाक कटा ली। तब ईश्वर दर्शन न होने पर प्रश्न किया कि भैया मुझे तो ईश्वर के दर्शन नहीं हो रहे हैं। तब उस नक कटे ने कहा, अब तुम्हारी नाक तो कट ही चुकी है, अतः यह कहना प्रारंभ कर दो कि मुझे ईश्वर के दर्शन हो रहे हैं, अन्यथा दुनिया वाले तुम्हें हास्य का पात्र बनाएंगे। इस प्रकार सब ग्रामवासियों ने अपनी अपनी नाक कटा ली तो राजा ने सबको समरूप नक कटा देखकर अपने को उनसे भिन्न प्रतीत किया तथा कुरूप अनुभव किया। राजा ने पूछा कि भाई आप तो सब तो बड़े रूपवान हैं, मैं ही क्यों कुरूप हूँ? तब लोगों ने उत्तर दिया कि राजन हम लोग भी इसी तरह नक्कू थे और इसी कारण भगवान के दर्शन नहीं होते थे। जब से नाक सफा हुई तब से भगवान के दर्शन हो रहे हैं। राजा भी ईश्वर के दर्शन करने के लिए नाक काटना चाहता था कि उस प्रथम नककटे ने कुछ कहने के लिए क्षमा मांगकर कहना प्रारंभ किया, हे नाथ, नाक काट लेने पर ईश्वर के दर्शन नहीं होंगे, अपितु मुझे लोग के हास्य से बचने के लिए यह उपाय सूझा, और इस प्रकार सबों ने अपनी नाक कटा डाली। अतः सबसे प्रथम प्राणियों को अपने राग द्वेष आदि परिणामों को दूर करना चाहिए। राग द्वेष अहंकार आदि परिणाम भगवान का दर्शन नहीं करने देते तब तक कि जब तक ये बुरे परिणाम दूर न हो। अंदर ही रखे ना ये आत्मा के ही दर्शन करने देते। आत्मा में छिपे तात्विक आनंद का ख्याल हो जाने पर विषय कषाय आदि के संक्लिष्ट परिणामों में पड़ना कोई नहीं चाहता। नहीं 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 इसके कहाँ रखे? नहीं नहीं नीली दो पुस्तकें नहीं है लेफ्ट साइड में? रहने दो रहने दो अंदर कहीं। ये 7 नंबर के पृष्ठ पर नीचे से दूसरा पैराग्राफ, नीचे से दूसरी लाइन। सदा विचार करना चाहिए जैसा चैतन्य स्वभाव अरहंत आदि में है वैसा ही मुझ में है, और जैसा मुझ में है वैसा ही अरहंत आदि में है। आत्मा राग द्वेष आदि बढ़ाकर जो अनिष्ट करता है वह अपना ही अनिष्ट करता है, तथा जो दान आदि द्वारा इष्ट करता है वह भी अपने लिए ही इष्ट करता है, दूसरों का न भला कर सकता है न बुरा। यह जो अपना स्वरूप बनाने के अतिरिक्त कुछ नहीं कर सकता। बुरे कर्म करने से हम अपने को ही नष्ट करते हैं, दूसरों का कुछ नहीं। यह आत्मा अपना ही काम करता है दूसरों का नहीं, यानी अन्य की पर्याय तो कोई कर ही नहीं सकता।
तो
कुछ नहीं है यानी परमात्मा का दर्शन नहीं होता है ऐसी बातें हो तो परमात्मा के दर्शन पर किसी ने खोटा ही कोई बताने वाले ऐसे मिल जाते हैं, ऐसा कुछ उसका तात्पर्य निकालना है। जिसने स्वयं अनुभव नहीं किया है वो अनुभव के लिए ऐसा कुछ भी उपाय बताएगा, ये हो सकता है ना? अनुभव तो उसने किया नहीं है और फिर लोगों को पागल बना देता है।
उनका अहंकार कहाँ ना कहाँ मान करता है,
नहीं
बढ़ा जाता था ना,
क्रिया
कटाई भाव होता है।
इन्हें अपना
अपना छुपाना चाहता है।
हाँ, वो अपना कुछ लोगों को दिखाना चाहता है, अपने में कुछ हीनप है।
हाँ, कमी, अपनी
कमी था उसमें कुछ, और लोग उसको चिढ़ाते थे। तो उसने ऐसे कुछ मायाचारी की, देखो मुझे तो ईश्वर के दर्शन हो रहे हैं, इन्हें इससे कुछ सिद्धांत से कुछ नहीं लगता है वैसे। हाँ, देखा देखी कर रहे हैं इन्हें, लौकिक में ऐसे चलता है, देखा देखी चलता है। और फिर कहेंगे तुम श्रद्धा से नहीं कर रहे, तुमको फल नहीं मिल रहा है। ऐसे अन्य मत में हमने भगवान के दर्शन कर लिया, ऐसा मना कहने वाले भी मिलते। देखो नीचे से तीसरे लाइन अभी हमने पढ़ी है, आत्मा अपना ही काम करता है, दूसरों का कुछ नहीं। जैसे दर्पण के पीछे दो बालक खड़े होकर क्रिया करते हैं, एक के द्वारा की गई क्रिया को दर्पण में देखकर ही दूसरा सब कुछ बताता जाता है, वैसे ही अपने को पदार्थ के अनुसार ही परिणमित करके वर्णन करते हैं लोग। क्या क्या प्राणी रुपया पैसा वैभव को ही सब कुछ समझता है, जबकि ज्ञान के समक्ष सब कुछ व्यर्थ है। देखो सर्वत्र महिमा ज्ञान की ही है, सब लोग ज्ञान को ही जानते हैं और ज्ञान को ही बताना चाहते हैं। यानी हम अपने आप में ज्ञान में ही सब कुछ जानना हो रहा है, ये जो कुछ है अपने में ही है। पदार्थ भले बाहर है परंतु उनका जानना तो अपने में ही हो रहा है। ज्ञान दान की बहुत बड़ी महिमा है, किसी प्रकार दूसरों को ज्ञान का दान देना चाहिए। ये सब चाहिए वाली बात है, चरणानुयोग संबंधी चल रही है। चाहे पुस्तक वितरण करके अथवा रुपया पैसा देकर, पढ़ाई कराकर या स्वयं पढ़ाकर आदि। सोचो जब हम दूसरों का कुछ नहीं कर सकते तब भगवान के लिए क्या कर सकते हैं। जिस प्रकार बम्बई घूमकर आए हुए प्राणी को बम्बई का संपूर्ण दृश्य अपने आँखों के समक्ष ही दृष्टिगोचर होता है, उसी प्रकार जिसने अपने को पहचान लिया उसे अपने में ही प्रभु नजर आते हैं, विपरीत अवस्था में दूर नजर जाते हैं। जिस प्रकार शीशे में हाथी जैसा विशाल प्राणी भी दिखाई देता है, उसी प्रकार ज्ञान में सब कुछ प्रत्यक्ष झलकता है। यदि यह प्राणी किसी से राग करता है तो भी अपने लिए ही, द्वेष करता है तो भी अपने लिए ही। तात्पर्य है जो कुछ करता है सब कुछ अपने लिए ही करता है, दूसरों का कुछ नहीं। मैं नमस्कार करता हूँ, इसमें चाहे किसी को भी नमस्कार करने का उद्देश्य बनाया है, किंतु है सब कुछ अपने ही लिए ही। भगवान को नमस्कार क्या दर्शकों को दिखाने के लिए करते हैं? मंदिर में जाकर नमस्कार करना दिखावा करना हो सकता है, परंतु अपने में ही, अपने द्वारा, अपने को, अपने लिए, अपने आप, अपने उद्धार के लिए नमस्कार किया जाता है। कल बात आई थी ना, परमात्मा को नमस्कार अपने को समझना है, अपने में लीन होना, यही सच्चा नमस्कार है। ये सब अपने में ही लगा लिया। देखो फिर से अपने में ही, हाँ शक्कर, अपने द्वारा, अपने में ही लिया, हाँ अपने द्वारा यानी करण, अपने को द्वितीय, हाँ अपने लिए संप्रदान, अपने आप करता, अपने उद्धार के लिए नमस्कार किया जाता है। नमस्कार का तात्पर्य है मैं अपने में, अपने लिए, अपने आप समाकर सुखी हूँ, अपने आप में समाकर सुखी होने की बात है, और उसी को नमस्कार कहा है। ज्ञान शक्ति, दर्शन शक्ति, चरित्र शक्ति की तरह ही आनंद शक्ति है। जो जो अनुभूति बनती है वे सब अपने से ही बनती है। जब यह प्राणी आत्मानंद का स्वाद एक बार आस्वादन कर लेता है तब उसे अन्य सब कुछ व्यर्थ लगता है। विलक्षण है यह आत्मानंद की अनुभूति। उस स्थिति में प्राणी सोचता है कि मेरी यह आत्मा के आनंद की अनुभूति निरंतर बनी रहे, अन्य कुछ नहीं। परमार्थ से अध्यात्म तत्व को ही नमस्कार किया जाता है, समोसरण में भी भगवान की मूर्ति ही नजर आती है। मंदिरों में जो मूर्ति है वह स्थापित मूर्ति है, आँखों से देखने पर मुद्रा ही नजर आती है। वो बात है ना, वहाँ पर भी शरीर दिखाई देगा या यहाँ पर तो स्थापित मूर्ति। ज्ञानमय ही भगवान है। सो अपने में मैं अपने को नमस्कार करता हूँ और परात्पर आत्मा को भी नमस्कार करता हूँ। अपनी प्राप्ति होना ही अपना नमस्कार है। अपने आत्म तत्व की प्राप्ति होने पर राग का स्वयं अभाव होने लगता है। ये पहले बात नहीं ना, राग को दूर करना, परंतु तो कथन की बात है। या तो अपने अनुभव हुए बिना तो राग दूर होगा ही नहीं। मंद होना बात अलग है, पर उसकी अनंतानुबंधी वाली जाति मिटेगी नहीं। यानी अपने अनुभव होने पर राग का स्वयं अभाव होने लगता है। जिसने अपने आप को प्राप्त किया है ऐसा वह परमात्मा भी मेरे स्वभाव के अनुरूप है। अतः मैं अपने में अपने आप को वह परमात्मा को नमस्कार करके, यानी परमात्मा का नमस्कार भी अपने आप में करना है। ये कल बात आई थी, कल विस्तार से बात की थी इसकी। अपने लिए अपने आप में स्वयं सुखी हो, ये हर एक जो उनकी गाथा है उसका जो एंड है यही है। श्याम स्वस्मय से सुखी स्वयं, देखा क्या श्याम वाली बात?
श्याम मैंने देखा था, विद्यार्थ का वो पहला पुरुष का ही फोटो है।
हो जाऊं वही तो मैंने बोला है। जैसे स्यात शब्द तृतीय के लिए आता है, जैसे श्याम मैं हूं। मैंने कल ही बताया, तो अस्मी का वो रूप होना चाहिए। अब ये दो नंबर के यादृक् सिद्धात्मनो रूपं तादृक् रूपं निजात्मनः भ्रांत्यां क्लिष्टस्तु संसारे स्यां स्वस्मै स्वे सुखी स्वयं। वैसा आसान है, उसके संस्कृत भी आसान है। देखो जैसा स्वरूप सिद्धात्मा का है, यादृक् यानी जैसा, शक्ति की अपेक्षा से वैसा स्वरूप निजात्मा का है। शक्ति कहो, सामर्थ्य कहो, स्वभाव को, एक ही बात है। आप कुछ कह रहे थे? स्वभाव। परंतु संसार में भ्रम से क्लेश को प्राप्त हुआ। क्यों क्यों दुखी है? भ्रम से। किसने कराया उसको भ्रम? ये अज्ञान जनित भ्रम है और उसी से वो कष्ट सह रहा है, क्लेश को प्राप्त हुआ। अब भ्रम रहित होता हुआ मैं अपने में अपने लिए स्वयं सुखी होऊं। ये है ना श्याम स्वस्मय से सुखी स्वयं। हर गाथा का एंड इसी से करेंगे। वो मुमुक्षु प्राणियों को विचार करना चाहिए कि जैसा सिद्ध प्रभु का स्वरूप है वही मेरा है। वही है ना, वैसा ही जैसा उनका है वैसा ही मेरा है। जैसा मेरा स्वरूप है वही सिद्ध प्रभु का। स्वयं के स्वभाव को लिए हुए सत्ता वाला वही मैं हूँ। यानी अपने स्वभाव सहित जो सत्ता है यही तो मैं हूँ। इनकी वाक्य रचना थोड़ी अटपटी लगती है ना, क्या है? स्वयं के स्वभाव को लिए हुए सत्ता वाला, ये सत्ता कैसी है? अपने स्वभाव को लिए हुए है, ऐसी सत्ता वाला मैं हूँ। जैसे गर्म जल व ठंडा जल, इन दोनों प्रकार के पानी का स्वभाव ठंडा है। पर्याय में कोई गर्म है अभी कोई ठंडा है, परंतु स्वभाव दोनों का ही शीतल है। उसी प्रकार क्योंकि अग्नि जल रही है और उसमें गर्म पानी डाल दो, बुझेगी कि नहीं बुझेगी? क्या भड़केगी? अग्नि पर गर्म पानी डालो और अग्नि पर शीतल घी डालो, क्या होगा? हाँ, वो भले गर्म है अवस्था में, फिर भी उसका स्वभाव ठंडा है। उसी प्रकार जैसा स्वभाव सिद्धों का है वही मेरा है। मैं संसार पर्याय में होते हुए भी सिद्धों के समान स्वभाव वाला ही हूँ, ही बताया। और हमें स्वभाव की ही बात लेनी है ना, जब हम कहते हैं मैं परिपूर्ण हूँ, मैं ऐसा हूँ ऐसा, वो मैं ने हम स्वभाव में हमने मैं पना स्थापित किया, तब हम वो कहेंगे। करने वाली पर्याय है, परंतु स्वभाव में मैंपना स्थापित करते हैं। तो कहते हैं मैं संसार पर्याय में होते हुए भी सिद्धों के समान स्वभाव वाला ही हूँ, ऐसा विचार कर सिद्धों की उपासना करने से लाभ होता है। अन्यथा कोई उनका दर्शन ऐश्वर्य धन दौलत के लिए तो किया नहीं जाता। क्या कहते हैं? ऐश्वर्य धन दौलत के लिए करने वाले हैं ना, मेजॉरिटी तो इसी के लिए है। कल आपने बताया ना स्वामी जी की बात, वो तो हमारे घर में वो दुकानों में क्यों बुलाते थे, पगला करो पगला। अरे उससे तो धन दौलत बढ़ जाएगी। अरे बाप रे, जिस जिन्होंने पूरी अपने आयु इसी में लगा दी कि एक द्रव्य किसी का कुछ नहीं करता है और बाह्य संयोगों से तू तेरा कुछ नहीं भला बुरा होता है, उसमें कुछ सुख नहीं है, तो उनको इसलिए बुला रहे घर में धन दौलत बढ़े। ये ऐसे भक्तों ने उनके कारण ये तो महापुरुष होते ना बदनाम हो जाते। पॉपुलर देखो क्या कहते हैं, सिद्धों की उपासना करना है नहीं, उसकी भी बात बताइए। अभी आत्मसिद्धि आत्मा अपने आत्मभावना हुई थी ना, स्वयं ही उपास्य है, अपने ही उपासना करने, वो तो व्यवहार से उपास्य है। अरिहंत सिद्धों को तो व्यवहार से उपास्य कहा, और सच में उपास्य तो मैं स्वयं हूँ, और उसकी उपासना आराधना करना है ना, अपने में लीन होकर अपने को जानते रहना। यह वही बात करे कि सिद्धों की उपासना है ना अपने में लीन होना, यही उनकी भी उपासना है। उनमें कर्ता व दाता की बुद्धि जीवों को नहीं करनी चाहिए, यानी भगवान हमारा कुछ कर देने वाले, हमारे बिगड़ी बना देंगे या उसको हमको कुछ दे देंगे ना? धन संपत्ति परीक्षा में पास करेंगे, अपनी केस अपने फेवर में हो जावे, तो कहते ये कुछ देने वाले नहीं है, करने वाले नहीं है। हे प्राणियों, सिद्धों का स्वरूप तो अपना स्वरूप समझने के लिए दर्पण के समान है। जिस प्रकार दर्पण को देखकर अपने चेहरे का भाव होता है, कोई भी उस दर्पण का चेहरा देखने के लिए दर्पण नहीं देखता। क्या कहते हैं, सुबह उठते ही दर्पण के सामने जाते हैं, दर्पण को देखने के लिए जाते हैं कि अपना देखते हैं? क्योंकि वो तो यहाँ चेहरा दिखाता है इसलिए उसके सामने जाते हैं, और चेहरे पर दाग लगाए तो क्या करते हैं, दर्पण को पहुंचते हैं। वहां बराबर है क्या करना है क्या नहीं समझ में आता है। इन्हें यही उदाहरण दिया, देखो। तो कोई भी दर्पण का चेहरा देखने के लिए दर्पण नहीं देखता, उसी प्रकार प्रभु को देखकर हमें अपने स्वरूप को समझना चाहिए, यानी वो प्रभु भी हमें अपना स्वभाव दिखा रहे हैं। जैसे दर्पण यहाँ जड़ शरीर मुंह को दिखा रहा है, वैसे उनको भी आदर्श कहते हैं। आदर्श दर्पण का एक नाम आदर्श भी होता है। तो सिद्ध भगवान हमारे आदर्श है, क्या दर्शाते हैं हमको, हमारा स्वभाव बताते हैं कैसा है। नहीं तो फिर दर्शन करने से क्या लाभ, जब हमें यही नहीं पता कि हम दर्शन क्यों कर रहे हैं। क्योंकि हमारे माँ बाप ने सिखाया बचपन से हाथ जोड़ना, नमस्कार करना, नीचे माथा टेकना, तो हमारे बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चे भी करने लगते हैं, तो उनकी सराहना भी होती है, लोग बहुत अच्छा अच्छा करते हैं तो भी खुश हो जाता है। यानी अपने वो तो कुल पद्धति से ये दर्शन आदि विधि करना सीख गया है, क्यों करना है सब लोग कर रहे हैं, फिर वहाँ जाके मांगता भी है, हमको बुद्धि दो या हमको पास करो या जो कुछ है। तो कहते हैं दर्शन करने से क्या लाभ, यही जब पता नहीं है तो दर्शन क्यों कर रहे हैं। उनसे फल की वांछा रखकर दर्शन नहीं करना चाहिए, यानी ये तो मूर्खता है ना, भगवान तो कुछ देते नहीं है और ये उनके सामने गिड़गिड़ा रहा है कि जिस वैभव धन संपत्ति में कुछ सुख नहीं दिखा उनको, वो छोड़कर चले गए और वही हम उनके पास मांगते हैं, क्योंकि वे कर्ता दादा तो है नहीं। भगवान तो पूर्ण विकासमय गुणपुंज है। क्या कहते हैं, गुणपुंज, आत्मा तो अनंत गुणों का समूह है, पुंज है, और वो कैसे है, गुणपुंज तो हम भी है, परंतु वो पूर्ण विकासमय पर्याय में वो पूर्ण विकास हुआ है, असंकुचित विकास तो हम देखते हैं, तो सभी गुणों का अमर्यादित विकास, परिपूर्ण विकास हुआ है, इसलिए कहते पूर्ण विकासमय गुणपुंज है, और हम गुणपुंज तो है, और उसका अगर हम स्वीकार करेंगे, उसका प्रतीति करेंगे, तो हमारे भी जो गुणपुंज है उसका विकास हो जाएगा पर्याय। उनका दर्शन आकार में नहीं होता, क्योंकि वे तो शुद्ध वो पूर्ण ज्योति पुंज है। ज्योति है ज्ञान के लिए, पूर्ण ज्योति पुंज ने केवल ज्ञानमय है, जिनके की ध्यान में सारा विश्व प्रकाशित हो जाता है। भगवान का नाम नहीं होता, अपितु नाम तो पर्याय का होता है। जो वस्तु व्यवहार से आवे उसका नाम रखा जाता है। जो भगवान है उसका नाम नहीं, और जिसका नाम है वह भगवान नहीं। भगवान तो उपासना का विषय है। भगवान एक दूसरे का कार्य करने वाला नहीं है, तथा ऐसा ही रूप अपनी आत्मा का भी है। हम तो सब दुनिया के काम करने वाले अपने को मान कर बैठे हैं, तो किसी कोई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता ही नहीं। मैं एक वस्तु हूँ तब अवश्यमेव कोई शक्ति युक्त हूँ। क्या कहते हैं, प्रत्येक द्रव्य है वो अपने स्वभाव से शक्ति से परिपूर्ण होता है, तो मैं भी एक वस्तु हूँ तो मैं भी अपनी शक्ति से युक्त हूँ। क्योंकि जो सत है उसमें उत्पाद व्यय अवश्य होंगे, क्योंकि हमने देखा है उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। प्रत्येक वस्तु सत है, सत्ता स्वरूप है, तो उसमें उत्पाद व्यय होना ही उसका स्वभाव है। हाँ लिखा है आगे, कहा भी है कि उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। उत्पाद व्यय द्रव्य रहित कोई भी द्रव्य नहीं है, और मैं ऐसा हूँ समझता हूँ कि मैं सबका उत्पाद कर रहा हूँ। उत्पाद तो नहीं, उत्पाद तो मचा रखा समझते कि नहीं उत्पाद क्या मेरे अज्ञान पर्याय का व्यय होकर ज्ञान पर्याय का उत्पाद होकर निज स्वभाव में आनंद बरतेगा। अतः अपने आप में विश्वास बना लेना चाहिए कि जो मैं हूँ वह भगवान है, तथा मैं वही हूँ जो भगवान है। मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान। इससे आत्मबल बढ़ता है। ये पहले लिए ना, देखो पहले पेज पर संपादक के भी पहले आत्म कीर्तन जो लिखा है ना, ये इनकी रचना है,
दूसरी राइट।
हाँ लिखा है, स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, अंतर यही उपरि जान वे विराग यह राग वितान। मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ यह है भगवान। यही बात यहाँ उन्होंने लिखी। ये तो हमने बहुत पहले से ये रचना वहाँ पहले पढ़ी थी, बहुत बहुत बार पढ़ी है। इनकी है ये पता नहीं था। कैलाश ने उसमें भी लिखे थे, वही पर हमने पहली बार वहीं से पढ़ा था। पता नहीं है, वही होगा शायद, अलग अलग समयों का होगा। बाद में पहने होंगे क्या पता।
हमारे जवानी के पिताजी की फोटो और मरते टाइम की फोटो, उसमें अंतर होगा क्या नहीं?
ठीक है आगे बढ़ेंगे। हाँ दी, ये हमने ये वाक्य पढ़ा भी, इससे आत्मबल बढ़ता है। मिला सबको? इससे ज्ञाता दृष्टा रहने की शक्ति प्राप्त होती है, चिंताएं दूर होती है। केवल बोलने से नहीं होती है, उसका अनुभव करने। जैसे एक कहावत है कि एक क्षत्रिय का बालक था, एक बनिए का बालक था। बनिए का बालक हृष्टपुष्ट था, क्षत्रिय का कमजोर। दोनों में लड़ाई हो गई। बनिए का बालक क्षत्रिय के लड़के को नीचे गिराकर ऊपर चढ़ बैठा। क्षत्रिय के बालक ने उससे पूछा कि भैया तुम किसके लड़के हो? उसने बताया, मैं तो बनिए का लड़का हूँ। इतना सुनना था कि क्षत्रिय पुत्र को बल व जोश आया और झट ऊपर आ गया। सो भैया, अपना स्वरूप सिद्धों के स्वरूप के समान समझने से आत्मबल बढ़ता है और एक विशेष प्रकार का आनंद प्राप्त होता है। यहाँ बरोबर उस दृष्टांत को सिद्ध किया। हाँ, हाँ वो तो हाँ।
एक सिंह का बच्चा मेंढियों के बच्चे में शामिल हो जाता है छोटपन से, और वो इधर उधर घूमते रहता है। तो एक दफे क्या होता है कि
सामने दहाड़ता है,
वो सिंह का माँ हो जो भी हो, सिंह होता है, जोर से दहाड़ते। तो वो भी अरे बोलता है ये मेरे जैसे है, तो वो भी जोर से दहाड़ते, सब भाग जाते हैं।
आपत्ति, विपत्ति, क्लेश, चिंता, यह सब ऐसा सोचने से है कि मैं वही हूँ, ऐसा सोचने से कि मैं वही हूँ जो भगवान है, तथा जो भगवान है वह मैं हूँ, नष्ट हो जाती है। इन्हें ऐसा सोचने से आपत्ति, चिंता, क्लेश सब नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि अपना स्वरूप ख्याल में आ जाता है। देह को मैं हूँ मानकर फिर वो सारी आपत्ति आपत्ति लगती है उसको। मैं तो ज्ञायक मात्र चैतन्य स्वरूप हूँ और ये मेरे से जुदा ही, ऐसा हम समझ लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं, तो वहाँ कोई चिंता ही नहीं है। सदा सब प्राणियों में समता का भाव रखना चाहिए। देखो ये चरणान योग की जो भाषा है, रखना चाहिए। जिसने अनुभव किया है, जिसके समता भाव उत्पन्न है, जैसे उसने अपने को देखा है वही वैसा ही वो सबको देखता है। अपने को चैतन्य स्वरूप देखा है तो अन्य सभी प्राणी मात्र उसको चैतन्य स्वरूप ही दिखाई देते हैं। इसी को समता भाव से देखना चाहिए वाली बात आती है। जो अनुकूल है उनमें भी यही प्रतीति करनी चाहिए कि सब सुखी होवे, तथा प्रतिकूल प्राणियों में भी समता का भाव रखना चाहिए। प्रतिकूल प्राणियों में करुणा भाव पैदा करके समता रखनी चाहिए, क्योंकि ये सभी जीव चैतन्य स्वभाव वाले ही हैं। यह प्राणी संसार में रहता है किंतु उसमें संसार नहीं रहे तो यही जय का साधन है। यह संसार से बाहर कैसे रहे किंतु फिर भी संसार में रहते हुए भी संसार से दूर रहकर अपने आप की आत्मा का कल्याण करे। जैसे नाव पानी में रहती है, चाहे वह समुद्र का पानी हो या नदी का, किंतु नाव में पानी नहीं। नाव में पानी आ जाने से नाव का ही अस्तित्व समाप्त हो जाता है। अपने में संसार नहीं, अपने में मिथ्या भ्रांति नहीं रखना, यही बात कह रहे हैं। हम यदि वास्तविक स्थिति देखें तो पाएंगे कि हम लोग अपने संबंधियों से तथा जिनसे मोह रखते हैं उनसे ठगे जा रहे हैं, तथा अपनी पर्याय इनके वश ही बिगाड़ रहे हैं। ये हम स्वयं बिगाड़ रहे हैं, वो नहीं हमारी बिगाड़ रहे, हम स्वयं बिगाड़ रहे हैं। हाँ, कल बात आई थी ना, जिनसे मोह है वो तो शत्रु है। अतः सर्वदा यही विचार करना चाहिए, मेरा स्वरूप सिद्धों के समान है, यही आत्मा का धर्म है। इसके अभाव में ही हम लोग मंदिर जाना, सामायिक करना आदि पुण्य के कार्य करते हैं ताकि उपयोग निज में लग जावे। इसके अभाव में अनेक धर्म तो यही है कि अपने में लीन होना। अब वो नहीं प्रकट होता है, या जब प्रकट भी होता है तो स्थिरता नहीं होती, तो पुण्य के कार्य में या पुण्य के परिणाम में लग जाता है। यानी वो पुण्य कार्य करते हुए भी अस्थिरतावश आते हैं, फिर भी उसका हेतु क्या है कि अपने में उपयोग स्थिर हो जाए। सदा विचार करना चाहिए कि कि भ्रांत्या क्लिष्टस्तु संसारे, पहली बात है ना, भ्रम से मैं संसार में घूम रहा हूँ और उसके दुख पा रहा हूँ। नहीं, भ्रांत्या वहाँ कुछ प्रिंटिंग, हाँ भ्रांत्या यहाँ बराबर है, वहाँ वो भ्रांत्या शायद हमने पढ़ा भी वैसा ही, भ्रांत्या क्लिष्टस्त संसार, भ्रांति के कारण मैं भ्रम में पढ़कर संसार में भ्रमित हो रहा हूँ। इन सबसे हटकर क्यों न मैं अपनी आत्मा में रमकर सुखी हूँ। इसे द्रव्य गुण पर्याय मैं कहते हैं। द्रव्य की अपेक्षा मैं और सिद्ध एक समान हूँ, सिद्ध के गुण और मेरे गुण समान है। यदि अंतर है तो केवल पर्याय का है, उनकी पर्याय शुद्ध व निर्मल है और हमारी मलिन है। वैसे तो एक अपेक्षा से हाँ कभी कभी इसकी भी बात है, उनकी भी पर्याय एक समय की है, उनके भी हर समय उत्पाद व्यय हो रहा है, हमारा भी हो रहा है, यानी कितनी कितनी समानता। अंतर्दृष्टि से देखे तो सभी जीव शुद्ध ज्ञायक स्वरूप एक रस है, यही विश्वास अमृत है। क्योंकि स्वभाव की अपेक्षा सब समान ही है, एक रस है, एक समान है हमें। मैं अमुक का पिता हूँ, किसी का पति हूँ, धनशाली हूँ आदि संस्कारों को ज्ञान रूपी जल से धोकर नष्ट करना चाहिए। क्योंकि मैंने मैं देह हूँ माना है, तो मैं माँ हूँ, मैं पुत्री हूँ, मैं बहन हूँ, मैं ये मेरा कर्तव्य है, मुझे ये करना है, तो ये बात लंबी लिस्ट चालू हो जाती है। तो यही बात कहते हैं कि ज्ञान रूपी जल से धोकर नष्ट करना है, नहीं ये इसको संस्कार का, ये भ्रांति के संस्कार चल रहे। अब उसको ये सही जो ज्ञान है आत्मज्ञान से ये बाकी संस्कार को मिटाना है। मैं ज्ञान मैं हूँ इस विचार के पश्चात बाकी सब माया है। मैं तो अनंत आनंद का निधान हूँ, निधान यानी खजाना हूँ, फिर क्यों थोड़े आनंद के लिए छटपटाता रहूँ, क्यों कल्पना कर संसार में भटकता रहूँ। बाहर भी आनंद तो थोड़ा ही है, उसकी सुख की कल्पना करके रखूँ। इंद्रियों के विषयों में से सुख मिलता है इस कल्पना करके उसके पीछे दौड़ रहा है। तो यही बात है, मैं तो अनंत आनंद का निधान हूँ और फिर भी ये बाह्य माने हुए कल्पनिक जो आनंद के लिए सुख के लिए छटपटाता रहा है, छटपट रहे। अनेक कठिनाइयों से प्राप्त हुए मानव जीवन को कितने हम देखते, कर्णान युग में अपना विषय चलता है रोज सुबह, ये मनुष्य पर्याय इतनी दुर्लभ में दुर्लभ है। अभी हम मनुष्य है अभी, परंतु हम कब से है तो अनादि काल से है, तो एकेंद्रियों में निगोद आदि में कितने कितने वो यानी अनंत काल वहाँ बिताते हैं, तब जाके त्रस्त पर्याय मिलती है। इसमें भी द्विंद्रिया आदि से इसकी बात करेंगे, मुख्यतः तो तिर्यंश आदि की होती है। अरे देव भी असंख्यात है, परंतु वहाँ पर भी सुख तो है ही नहीं। अब मनुष्य पर्याय इसी दुर्लभ में दुर्लभ, नारकी होना सुलभ है, देव होना सुलभ, तीरिंच में तो अनादि से घूम ही रहा है, मनुष्य ही पर्याय कभी कभी मिलती है। तो कहते अनेक कठिनाइयों से प्राप्त हुए मानव जीवन को विषय कषाय में नष्ट नहीं करना चाहिए। ये मानव जीवन की तो कुछ वैल्यू ही नहीं लगती। जो कोई हम देखते हैं कि बहुत पैसे वालों के घर में जो जन्म लेते हैं बच्चे, पैसे की कोई वैल्यू नहीं उनको, उनके माँ बाप दादा वगैरह कहते देखो हमने कैसे कैसे काम करके पैसे इकट्ठा किया है और आप क्या कर रहे हैं अभी धन का, कैसे बर्बादी कर रहे हैं। घर के बड़े कहते हैं ना, आपने सुना होगा ऐसा। तो जो उसके साथ जन्मा है उसको उसकी कोई वैल्यू नहीं। अभी तो हम इन पर्यायों में घूम घूम कर आए, इतना अनंत दुख पाया है, अभी मनुष्य हुए, मनुष्य हो गए तो अभी उसकी कुछ वैल्यू नहीं रही, क्योंकि उसकी कितने कठिनाइयां, उसकी दुर्लभता मनुष्य होने पर क्या, क्योंकि हम मनुष्य ही है, बस इस भवपुर से हमें अभी स्मृति है, बाकी पहले का क्या हुआ हमको याद नहीं है, कुछ पता नहीं है, वो हम आगम से जान सकते हैं। तो कहते हैं इसलिए इसकी कुछ वैल्यू नहीं रही इसको। तो अनेक कठिनाइयों से प्राप्त हुए मानव जीवों को, जीवन को क्या करें हम, जन्म के बाद क्या क्या किया हमने, तो वो नहीं करना चाहते कर, विषय कशा में नष्ट नहीं करना चाहिए। और सभी मानव जाति आज क्या कर रही है, बस कैसे करके पैसे कमाना है और वो पैसे का बिल्कुल उपभोग लेना है। अपनी ही सीधी सीधी बात न समझकर प्राणी भ्रम करते हैं कि मैं अमुक शहर का रहने वाला हूँ, अमुक जाति का हूँ। इन सब संस्कारों को कभी न कभी तो अवश्य ज्ञान रूपी जल से धोना पड़ेगा। ये सारे मिथ्या संस्कार है और ज्ञान से ही वो नष्ट हो सकते हैं। मेरा स्वभाव तो भगवान के स्वभाव की तरह है, अतः बाह्य भ्रमों में पड़ना व्यर्थ है। देखो भैया, भगवान के पास क्या है, केवल ज्योतिपुंज आत्मा, फिर भी सब प्राणी उन्हें नमस्कार करते हैं। फिर क्यों न हम भी उनके समान गुण धारण करें, क्यों न वैसा ही बना जावे। इतना जान भी लेना संतोषजनक होता है, मैं सिद्ध भगवान के स्वरूप के सदृश हूँ। यदि उपयोग नहीं लगता तो ऐसा विचार करने से भी तो आनंद ही प्राप्त होता है, ऐसा होते होते दृढ़ ज्ञान हो जाएगा। यहाँ क्या कहते हैं कि उसका अभ्यास डालना चाहिए। ये जो भी अपने आत्मभावना में तो हमने देखा है किस किस तरह से विचार करना, क्या करना, क्योंकि अंत में सबकी शरण ज्ञान ही है। ये भी आता है ना, इस विश्व में कोई शरण नहीं है, मेरी आत्मा ही तेरे लिए शरणभूत है। यदि कोई करोड़पति क्यों न हो, जब तक उसका पुण्य उदय है तब तक भले ही मजे कर ले, किंतु फिर भी उस समय में किए गए बुरे परिणाम आगे गति बिगाड़ दी। क्या कहना चाहते हैं, अभी जो करोड़पति है या जो अनुकूल संयोग है तो पूर्व के पुण्य को भोग रहा है, परंतु पुण्य को भोगते समय वर्तमान के क्या परिणाम कर रहा है वो। नहीं, वो तो फल देके जाएगा, परंतु अभी वो क्या कर रहा है, अभी उसके जो परिणाम हो रहे हैं उस परिणाम का उसको फल मिलेगा ही मिलेगा। हम कर्म का फल नहीं कह रहे, उसके अपने परिणामों का उसको फल मिलने वाला है। हाँ, नया भी कुछ नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं है, पुण्य के फल में भी, यानी अभी तो अनुकूलता है ना, तो अभी अपने लिए सोचना, वो अच्छा लगता है, वो संयोग अच्छे लगते हैं और वो भोगना चाहता है। ये चाह इटसेल्फ दुख रूप है और ये इटसेल्फ पाप रूप है, ये उसको पता नहीं लग रहा, और इसलिए वो कोई भी पुण्य भी करना चाहे, वो पुण्य किस लिए चाहता है, अभी कुछ करूँ तो मुझे भोगना मिलेगा, इसलिए उसमें अपना स्वरूप की कोई विचार नहीं उसके पीछे। तो कहते हैं उस समय में किए गए बुरे परिणाम आगे गति बिगाड़ देंगे, यानी जैसे परिणाम करता है वैसे उसके जैसी मति वैसी गति तो होगी होगी। मैं सुखी दुखी मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह गो धन प्रभाव, मेरे सुततीय मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। कहाँ लिखा ये छड़ा। आदि पर्याय बुद्धि, पर्याय बुद्धि ने ये मनुष्य पर्याय जितना ही मैं हूँ, या जो संयोग है वैसा मैं रंक हूँ, मैं राह हूँ, ये सब यही तो बता रहे, ये सारे दुख का दही देने वाला है, ये पर्याय बुद्धि का परिणाम दुख को देने वाला है। मैं तो ज्योति स्वरूप यानी ज्ञान मैं, अमूर्त आत्मा भगवान के समान स्वभाव वाला हूँ, ऐसा सोचते हुए भगवान को नमस्कार करें। भगवान को नमस्कार, सच्चा नमस्कार तो अपने में लीन होने से ही होता है। 11 पेज पर आए, इसके भीतर के मर्म पर दृष्टि रखो तथा बाह्य सब छोड़ो, तथा अपने को पहचानो। बाह्य छोड़ो यानी बाह्य का उपयोग छोड़कर अपने में लीन हो जाओ। मुझे अमुक ने गाली दी ऐसा मन में भाव लाना ही दुखजनक है। भैया अपने से प्रतिकूल जीवों पर भी करुणा कर समान भाव पैदा करो। सोचो कि ये जो प्रतिकूल प्राणी हैं ये अज्ञानी हैं, जिन्हें अपनी आत्मा के स्वरूप का ज्ञान ही नहीं है। वे अपने स्वभाव को जान जावे ऐसी करुणा उनके ऊपर करनी चाहिए, यानी उनके प्रति भी क्या भाव होना चाहिए वो भी अपने स्वभाव को पहचाने। किसी भी जीव से घृणा नहीं करनी चाहिए। जगत में कोई भी जीव घृणा का पात्र नहीं है। ये चाही वाली भाषा है, हमें तो उपदेशात्मक ही बोल रहे हैं। यहाँ तो ये समझना है, हमने वहाँ पर भी देखी ना आत्मभावना में यही बात आई थी। अभी कोई गाली देता है, किसको देखकर देख रहे हो? तो शरीर को देख रहे हो, तो मुझे देख ही नहीं सकता। और जो बोलना है भाषा है वो तो उसकी नहीं है, वो बोल नहीं सकता। और जिसको देखकर कह रहा है वो भाव कर रहा है, तो वो मैं नहीं हूँ, मैं तो अरूपी हूँ। तो इस तरह से इन्हें विचार करता है तो इसे बिल्कुल समाधान हो जाता है। सब जीवों का सहज स्वरूप, ये सहज स्वरूप जो स्वाभाविक स्वरूप है, टंकोत्कीर्णवत स्वतः निश्चल एक ज्ञायक स्वरूप है। समय सार में यही टंकोत्कीर्ण शब्द बहुत सारा है, टांकी सी उकारे, यानी वो कभी भी उसमें हीना दिखता नहीं होगी। द्रव्य दृष्टि से देखो तो निर्विकल्प अनादि अनंत अहेतुक चेतन तत्व है। क्या कहते हैं? निर्विकल्प यानी अभेद। निर्विकल्प का अर्थ विकल्प रहित ऐसा भी होता है, और द्रव्य दृष्टि से देखने पर उसमें कोई भेद भी दिखाई देते नहीं, इसलिए निर्विकल्प कहते हैं। हाँ, तत्व डबल होना चाहिए। तो अनादि अनंत अहेतुक, अहेतुक यानी उसका कोई कारण नहीं है, क्योंकि कारण जो पर्याय में हम कहेंगे कार्य होता है तब कारण को ढूंढेंगे, यह तो कोई कारण ही नहीं, तो है सत सिद्ध है, चेतन तत्व है। गुण दृष्टि से देखो तो सभी ध्रुव शक्तिमय है। देखो यह गुण की द्विदृष्टि की, अभी द्रव्य दृष्टि गुण दृष्टि। अतः सिद्ध प्रभु में और समस्त जीवों में कोई अंतर नहीं है, केवल यानी मात्र वर्तमान परिणति की दृष्टि से देखने पर अंतर दिखता है। ये भी वर्तमान परिणति डाली है मैं। सिद्ध प्रभु तो शुद्ध विलास रूप है। ये विकास कहो विलास कहो, ये पर्याय में जो प्रकट होता है उसको कहा है। और संसारी जीव अशुद्ध विलास रूप है। यह अंतर है क्योंकि भोगने में तो परिणति ही आती है। क्या कहा? वेदन किसका होता है? परिणति का, जो पर्याय में है उसी का वेदन होता है। यही कह रहे, भोगने में तो परिणति ही आती है, अतः महान अंतर है। यानी स्वभाव दोनों का समान है और वो अनंत सुख भोग रहे और हम दुख भोग रहे, क्यों? वेदन वो परिणति का होता है, अनुभव जो पर्याय में जो प्रकट है उसका अनुभव होता है। अतः महान अंतर है तो भी यह परिणति जीव के स्वभावकृत नहीं है। विभाव है ना ये, किंतु निमित्त नैमित्तिक भाव पद्धति विहित है, अतः मूल में कुछ भी अंतर नहीं है। सिद्ध प्रभु की तरह शुद्ध केवल ज्ञानमय बनने का क्या उपाय है? अपने आप को केवल निरखना। केवल यानी बस, यानी हमने सबको मिला मिला कर देखा ना, ये देह में हूँ रागमय में हूँ ऐसा सबको, अपने को केवल अपने को देखो। ज्ञान में निरखना केवल ज्ञानी बनने का उपाय है। हम अपने को जिस रूप में निरखेंगे उस रूप की प्राप्ति होगी। अतः हम अपने को यथार्थ सहज निज स्वरूप जैसा है वैसा ही चित स्वभाव रूप अपने को अनुभवे। मैं स्वतः सत हूँ, स्वतः परिणामी हूँ, स्वतंत्र हूँ, विज्ञानानंद घन स्वच्छ अविनाशी हूँ। इस प्रकार अपना अनुभव करो, सत्य सुखी होने का यही एक उपाय है। आगे है, चलो 5 मिनट है, अभी 3 नंबर के श्लोक को पढ़ेंगे हम। विश्वतो भिन्न एकोपि कर्ता योगोपयोगयो राग द्वेष विधाता सन् स्याम स्वस्मै स्वे सुखी स्वयं। विश्वतः भिन्न एकोपि, समस्त पदार्थ से न्यारा अकेला होने पर भी मैं योग उपयोग यो हो, योग अथवा आत्मा के प्रदेश परिस्पंद। अभी हमारा सुबह का योग मार्गणा में यही चल रहा है बहुत। तथा उपयोग का करता और राग द्वेष का करने वाला हुआ, क्या कहते हैं? यानी ये तो जीव पदार्थ सबसे न्यारा है। अभी कलशामृत में भी यही बात चल रही है, 6 द्रव्य में एक द्रव्य ऐसा कहा, यानी प्रत्येक द्रव्य, तो प्रत्येक द्रव्य अपना अपना सब कुछ करता है, तो परदृश्य के साथ उसका कुछ संबंध नहीं। वही बात चल रही है ना, अकेला द्रव्य, अकेला एकम द्रव्य ऐसा उसमें शब्द है। एकम यानी प्रत्येक द्रव्य भिन्न भिन्न ही है, उससे अन्य द्रव्य से कुछ लेना देना नहीं। यही कहते समस्त पदार्थों से न्यारे अकेला होने पर भी कह के अभी वो विरोधाभास बता रहे, यानी योग और उपयोग का करता है और राग द्वेष का करने वाला हुआ, अतः भ्रांति रहित होता हुआ मैं अपने में अपने लिए स्वयं सुखी हूँ। हम देखते हैं ना हमेशा, वो कुम्हार ने घड़ा बनाए, उसका क्या हुआ, उसमें क्या योगदान रहा, तो उसका योग और उपयोग। योग किसको कहना है? अपने सभी सुबह उसकी परिभाषा वहाँ ये है कि जो मनोवचन काय की प्रवृत्ति होती है, प्रवृत्ति तो मनोवचन है, वो तो जड़ है। उसके लिए आत्मा का जो प्रयत्न हुआ, आत्मा का प्रयत्न उसके प्रदेशों में जो कुछ परिस्पंद हुआ, हालचाल हुई, जो कुछ हुआ, आत्मा ने प्रयत्न किया। आत्मा तो जड़ में क्या कर सकता है, कुछ नहीं। उसके अपने प्रयत्न हुए, आत्मा के अपने प्रयत्न हुए, यानी उसके जो प्रदेशों में जो कुछ हलचल हुई, तो उसको योग कहा। यानी यहाँ क्या, जीव ने क्या किया, उसके अपने प्रदेशों का जो परिस्पंदन हुआ और उसका उपयोग उसमें लगा। अज्ञानी का ही लेना, क्योंकि उसका ये कर्ता बन के बैठता है ना, अज्ञानी। सुबह यही बात चल रही धवला में, हमारी यही बात चल रही, यहाँ लिखे ना। इसलिए राग द्वेष का भी और योग उपयोग का भी करता होकर बैठा है। उपयोग कहने वो तो पर पदार्थ का कुछ करना धरने वाला मानता है ना ये, हाँ। यानी समस्त पदार्थों से न्यारा होने पर भी का अर्थ क्या है, ये कुछ किसी का कुछ कर ही नहीं सकता है, फिर भी योग और उपयोग उसमें लगा है और राग द्वेष का कर्ता बन के बैठता है, हाँ। अतः भ्रांति रहित होता हुआ, ये यही तो भ्रांति है ना, मैं राग द्वेष का करता हूँ, ये भी उसकी भ्रांति चल रही है। मैं अपने में अपने लिए स्वयं सुखी हूँ। इस जगत के अंदर अनंतानंत जीव है, अनंतानंत पुद्गल है, धर्म एक है, अधर्म एक है, आकाश एक है, असंख्यात काल द्रव्य है, किंतु फिर भी प्रत्येक परमाणु सारे अनंतानंत परमाणुओं से भिन्न है। ये कलशामृत के बिल्कुल वही बात यहाँ आ गई। सारे अनंतानंत परमाणु भी प्रत्येक परमाणु से भिन्न है, एक स्कंद की अपेक्षा भी प्रत्येक परमाणु अपने क्षेत्र में ही परिणमन करता है। पूरा स्कंद क्यों ना हो, हर परमाणु अपने में परिणमन कर रहे हैं, वो दूसरे के कारण इसमें है, ऐसी भी बात नहीं है। कोई भी एक परमाणु अनंतानंत परमाणुओं से भिन्न है, सत की अपेक्षा धर्म अधर्म कौमा आकाश काल भी जुदा जुदा है। स्कंद में परमाणुओं का परिणमन सामूहिक रूप से होता है, किंतु फिर भी प्रत्येक परमाणु अपने अपने क्षेत्र में ही परिणमन करता है। कितनी बिल्कुल स्वतंत्रता बता रहे हैं। इसी प्रकार प्रत्येक जीव अनंतानंत जीवों से जुदा है। यह प्राणी जो मोह माया में फंसकर रात दिन विचरता रहता है, यह मेरा है, यह मेरे घर का है, यह सब व्यर्थ है, क्योंकि अपने स्वभाव से बाहर अपना क्या है। चैतन्य स्वभाव के अतिरिक्त ये वैभव, ये ठाट बाट सब व्यर्थ है। जिसने अपना स्वभाव समझ लिया, उसके लिए ये सब बातें निस्सार लगती है। हम यही रुकेंगे अभी। जावानी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तकनं सदा देत हो। नलिन भाई,
नमो अरिहंतो, नमो श्रीतो, नमो आय।